नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव से पहले रिकॉर्ड 4,650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर प्रशासन में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विश्लेषण की भूमिका पर बल दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज आलातूर और त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने वामपंथी सरकार पर दक्षिणी राज्य में केंद्र के विकास कार्यक्रमों में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र में उल्लेखित विभिन्न वादों और विकास कार्यक्रमों के बारे में भी बात की।
बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी युडे गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। 70 ईयर से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम कोझिकोड में यूडीएफ की रैली को संबोधित करेंगे। वो आज और कल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जहां वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। एलडीएफ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी इस सप्ताह प्रचार अभियान में उतरने वाले हैं। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मत डाले जाएंगे। इस बीच पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार त्रिपुरा को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी ने जनजातीय समुदाय के सम्मान, सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद आदिवासी समुदाय की एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आदिवासी कल्याण विभाग के लिए बजट में पहले 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि अब ये राशि 1,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस बीच कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। श्री शाह आज मणिपुर के इम्फाल और राजस्थान के जयपुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। श्री शाह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। भाजपा आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र में थौना ओजम बसंत कुमार को और बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र में नागा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। कांग्रेस और उसके समर्थक दल भी आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से अंग मचा बिमोल अकोईजाम के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल राज्य में 4 रैलियां की। जयपुर में श्री शाह के अलावा भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस नेताओं का आज प्रचार का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर कैलिंगपोंग के गरुत्थान और सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सिक्किम में लोकसभा की एक तथा राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी राज्यभर में मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राज्य में इस महीने की 19 तारीख को मतदान कराया जाएगा। सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी ने रविवार को ग्यालसिंग में पेचेरेक डांडा से बर्मेक बाजार तक रैली निकाली। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने रविवार को गैंगटोक के रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं तमिलनाडु के थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की एक रिपोर्ट।
2009 में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ था। इसमें विधानसभा की 6 सीट हैं। 2019 में कोनिमोझी करुणानिधि इस निर्वाचन क्षेत्र से 56% से अधिक वोटों के अंतर से भाजपा की तमिलिसाई सुंदरराजन को हराकर जीती थी। कोनिमोझी यहां दूसरी बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 14,48,000 से अधिक मतदाता हैं। AIADMK से शिवसामी वेलुमणि और बीजेपी की सहयोगी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस से विजय सीलन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यह क्षेत्र सड़क और समुद्र मार्ग से देश के सभी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हालांकि हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मदुरई तक जाने के लिए उड़ान भरनी होगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 3,475 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई थी। आयोग ने कहा है कि चुनाव से पहले जब्त की गई कुल राशि का 45% मादक पदार्थों के रूप में जब्त किया गया है। आयोग ने कहा कि यह राशि विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, व्यापक योजना और लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत जब्त की गई है। इस वर्ष पहली मार्च से प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि केवल अनुभवी नेता के प्रयासों से राष्ट्रीय प्रगति हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुभवी नेता के पास साहसपूर्ण कदम, व्यापक सोच, वैश्विक समझबूझ, सम्मान और गारंटी पूरी करने का रिकॉर्ड तथा निर्धन और युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य होता है। बेंगलुरू में आज मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सशक्त बहुमत वाली सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा भावी सोच वाला नेता ही राष्ट्रीय प्रगति को सदैव प्राथमिकता देता है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी की लहर दिख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विविधता की रक्षा करना वहां सबसे बड़ा मुद्दा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
2 बजे समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत एनालिटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों से कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। इससे करदाता का कर प्रणाली में विश्वास बढ़ता है और अधिक से अधिक लोग कर का भुगतान करते हैं। श्री धनखड़ आज नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में भारतीय राजस्व सेवा IRS के 76वें बैच के प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता भी उपस्थित थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कुछ गुटों द्वारा सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संकुचित राजनीतिक हितों और निजी फायदे से प्रेरित होकर ऐसे तत्व न्यायिक प्रणाली के बारे में लोगों के विश्वास में कमी लाने के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों ने इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई से न केवल न्यायपालिका की शुचिता का अनादर होता है बल्कि न्यायाधीशों की पारदर्शिता के सिद्धांतों को सीधी चुनौती दी जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आज आबकारी नीति मामले में इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। के कविता की पुलिस हिरासत की 3 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 मार्च तक CBI की हिरासत में भेज दिया गया था। CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। गृह मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण की रिपोर्ट को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार और द्वेषपूर्ण भावना फैलाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर समझ और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। वे उज्बेकिस्तान के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि जनरल मनोज पांडे की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए क्षेत्रों का पता लगाना भी है। विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत इसराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है। भारत ने ईरान और इसराइल से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरू में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई में कल शाम चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। कोलकाता में खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर हिमालय क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू होकर 19 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ मंदिर बोर्ड ने घोषणा की है कि 52 दिन की यात्रा के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वार्षिक यात्रा दो मार्गों अनंतनाग जिले में नूनवान पहलगाम मार्ग और गंदरबल जिले में बालताल मार्ग से की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1948 को इस पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, जिसके बाद 1 जुलाई 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति आज अपना लोंगटे त्यौहार मना रही है। लोंगटे निशी जनजाति के सबसे पुराने और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से पेंशन प्राप्तकर्ताओं के शिकायतों के प्रभावी निवारण विषय पर पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के निदेशक डॉ प्रमोद कुमार सार्थक चर्चा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार। प्रवर्तन एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव से पहले रिकॉर्ड 4,650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर प्रशासन में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विश्लेषण की भूमिका पर बल दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।